इस धाम में हम बैठे हैं, यह श्रवण का धाम भी है, यह खूब श्रवण हुआ है और श्रवण करने वाली साक्षात रुक्मिणी ही रही। रुक्मिणी का खुद का उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है श्रवण क्षेत्र में। इस बात को सुखदेव गोस्वामी कहे, गंगा के तट पर राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, बहुत बड़ी धर्म सभा में उन्होंने कथा सुनाई। राजा परीक्षित सुने ही और साथ ही साथ औरों ने उस कथा को सुनाया। उस समय वृंदावन लीला, श्री कृष्ण की वृंदावन लीला है, फिर मथुरा लीला, बीच में थोड़ी सी अवंतीपुर उज्जैन लीला जहाँ भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम गए अध्ययन के लिए, वहाँ की लीलाएं, पुनः भगवान मथुरा लौटते हैं जरासंध के साथ, 18 साल युद्ध होता है, मुचकुंद उद्धार इत्यादि इत्यादि, और फिर भगवान 18 बार युद्ध नहीं खेले, युद्ध को उन्होंने छोड़ा, रन को छोड़े भगवान, तो हुआ रन छोड़। किसने नाम दिया भगवान को? जरासंध ने। जरासंध ने कहा रन छोड़, देखो डरपोक कहीं का, ये कृष्ण डरपोक है, रन छोड़ रहा है। तो हुआ भगवान, थोड़ा रूटीन चल रहा था, हर साल वही युद्ध चल रहा है, बोरिंग थोड़ा, एक बार खेला युद्ध, 2 बार 10 बार 15 बार 17 बार हराए जरासंध को, तो 18th time उन्होंने युद्ध नहीं खेला। तो इस धाम का भी स्मरण कर रहे थे श्री कृष्ण, और यहाँ के रुक्मिणी का स्मरण कर रहे थे, अपने भविष्य में होने वाले विवाह का स्मरण कर रहे थे, उसको अधिक महत्वपूर्ण समझे भगवान। और भगवान रणछोड़, भगवान श्री कृष्ण और साथ में कौन, बलराम, दोनों मिलके द्वारिका पहुंचे। तो वहां का किंचित सा वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी। तो वृंदावन मथुरा लीला के उपरांत सर्वप्रथम लीला का जो वर्णन सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ है भागवत में, वो रुक्मिणी हरण लीला का है। थोड़ा ही समय बिताए हैं द्वारिका में, बलराम जी का युद्ध हुआ है, बड़े भाई का युद्ध, पहले युद्ध नहीं, विवाह पहले होना चाहिए, तो उनका विवाह रेवती रमन बलराम जी का विवाह हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ की कथा प्रारंभ करते हैं, बड़े प्रेम से रुक्मिणी हरण की लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं। राजा आसित भीष्म को नाम विदर्भ अधिपति महान। तो कथा की शुरुआत हो गई, एक था राजा, ऐसी शुरुआत होती है ना, तो यह कहा एक था, नाम था भीष्मक, कहाँ के राजा थे, विदर्भ के अधिपति महान राजा थे। तस्य पंचाभवन पुत्रः, और उनके कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे, कन्यका च वरा नना, और एक कन्या थी, लिख लो, तो सो रहे हैं ना उनके लिए, मतलब उसे कुछ सोते सोते भी लिखते हैं, ऐसा नक्शा बन जाता है फिर। तो उनकी कन्या थी, कैसी कन्या, वर आनना मतलब मुख, आनना सुंदर मुख वाली रूपवती रुक्मिणी। तो पुत्रों के नाम भी दिए हैं, सा उपश्रुत्य मुकुंदस्य, या कहा है, और क्या करती थी, तो मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय, मुकुंद के रूप का, गुण का, लीला का, धाम का उपश्रुत्य, सुनकर, सुनने वाली कौन, ये वरानना रुक्मिणी। तो भगवान का महिमा श्री कृष्ण मुकुंद श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला को सुनकर उसने अपना मन बना लिया। मैंने सदृशम पति, मेरे अगर पति होंगे तो कैसे होंगे? मुकुंद जैसे, श्री कृष्ण जैसे मेरे पति होंगे। तो मुकुंद जैसा, श्री कृष्ण जैसा और कोई है? मतलब और कोई नहीं होगा, मुकुंद ही होंगे। मुकुंद जैसा और कोई नहीं है, इसलिए मुकुंद ही पति मेरे होंगे। और वहां द्वारिका में भी, तो द्वारका और कौंडिन्यपुर के बीच में आचार्यों का आना जाना रहा करता था, तो द्वारिका के समाचार यहाँ पहुंचाते थे वो महात्मा परिव्राजकाचार्य, फिर वहाँ के यहाँ के समाचार द्वारिका में पहुंचाए जाते थे। तो द्वारिका में श्री कृष्ण सुन रहे हैं, ताम बुद्धि लक्षण औदार्य रूप गुण शिलाश्रयाम। तो रुक्मिणी, बुद्धिमान रुक्मिणी ऑफ इंटेलिजेंट, बुद्धिमान रुक्मिणी और उदार औदार्य और शील चरित्रवान रुक्मिणी, सुशीला थी। कैसी थी? सुशीला, 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 अच्छे शील चरित्रवान, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ब्यूटी से चरित्र अधिक महत्वपूर्ण है, सौंदर्य से चरित्र अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन रुक्मिणी तो सुंदर भी थी और चरित्रवान भी थी। कृष्णश सदृशीं भार्याम, तो वह द्वारिका में कृष्ण भी अपना मन बना लिए, मेरी अगर कोई पत्नी होगी तो रुक्मिणी जैसी। तो रुक्मिणी जैसी कोई और है नहीं पूरे अमरावती में, फिर कोई कहेगा शायद नागपुर में मिल सकती है, कहीं भी नहीं। रुक्मिणी जैसी रुक्मिणी ही है, मैचलेस। वैसे रुक्मिणी कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, रुक्मिणी भगवान की आह्लादनी शक्ति है। राधा चंद्रावली, चंद्रावली का चंद्रावली है जो भगवान की आह्लादनी शक्ति विशेष, हम भी छोटी छोटी शक्ति है, अंश है, और भगवान को आह्लाद देने के लिए हमको भी बनाए भगवान। भगवान को आह्लाद देने के लिए हमको बनाया भगवान ने, लेकिन हम स्वतंत्र होके स्वयं ही आह्लाद लेना चाहते हैं, भगवान को आह्लाद नहीं देना चाहते। फिर इसी संसार के स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और अपना खेल पैरेलल, भगवान की लीला भी चल रही है और हमारा खेल भी हो रहा है। भगवान के साथ ईर्ष्या होती है, कंपटीशन होता है और भोग, और फिर आगे संभोग। तो यही तो रोग है, व्याख्या करते जाएंगे तो फिर लीला कथा नहीं हो पाएगी। तो रुक्मिणी को भगवान, वो भी आह्लादनीय शक्ति है, जीव तत्व नहीं, हम लोग जीव है, तो जीव को भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवान बनाए हैं। भोग्य, हम भोगता नहीं, हम भोग्य है, भोगने योग्य है। किसके भोगने योग्य है? वाक्य को पूरा कीजिए, किसके भोगने योग्य हम है? भगवान के, भगवान के भोगने योग्य हम है, इसीलिए भोग्य, हम भोग्य है। भगवान, भगवान कौन है? भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम कहो, या जीव के भोक्ता भगवान है। तो हमें भगवान को आनंद देना चाहिए, ये तभी होता है जब भक्ति योग में फिर हम भगवान को आनंद देते हैं, सुखी करते हैं। तो हम तो क्षुल्लक है, ऐसे हम लोग क्षुल्लक बाब, ये बाब कैसे आए? क्षुल्लक मतलब हम क्षुल्लक, बड़े छोटे हैं, क्षुल्लक। तो ये राधा रानी, ये रुक्मिणी और गोपिया, अन्य भारिया जो द्वारिका में है, वो जीव तत्व नहीं है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है। तो भगवान ने मन बना लिया कि मेरी पत्नी अगर कोई होगी तो रुक्मिणी जैसी होगी, मतलब रुक्मिणी ही होगी, तो यह विवाह की तैयारी। अब रुक्मिणी हो गई, उम्र बड़ी बढ़ गई तो विवाह होना चाहिए। तो रुक्मिणी ने तो मन बना लिया था, लेकिन रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने सोचा कि मेरे बहन जी का रुक्मिणी का विवाह किसके साथ? शिशुपाल के साथ। कहा हंस और कहा कौवा, काओ 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 काओ, तुलना ही नहीं है। लेकिन रुक्मी ने ऐसा विचार किया। रुक्मिणी का और विचार था, लेकिन रुक्मी का विचार कुछ शिशुपाल से होना चाहिए। तो विवाह की मुहूर्त भी देखा गया, अब कुछ ही दिनों में विवाह भी होगा। ऐसे ये राजा भीष्मक चाहते तो नहीं अपने पुत्री का विवाह शिशुपाल के साथ हो, लेकिन वे आसक्त थे अपने पुत्र में, इसलिए उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी और विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी। तो इस धर्म संकट से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए रुक्मी उपाय, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बगल में खड़े जाओ। अब देखते एक एक देखते नेक्स्ट कौन है, अरे बैठना नहीं वहां। तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को भेजा, एक विश्वासु ब्राह्मण को द्वारिका भेजा, पत्र लेके, रुक्मिणी का पत्र लेके ब्राह्मण वहां पहुंच गया, द्वारिका पहुंच गया। भगवान ने उनका स्वागत किया है, कुशल मंगल पूछा है, किम कार्यम करवामते, और पूछा कुछ हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? द्वारकाधीश कहे ब्राह्मण को, आप इतने दूर से आए हो, कोई विशेष उद्देश्य होने की संभावना है, तो हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए, कुछ कार्य, कुछ सेवा, कुछ। तो अब टॉपिक निकल आया, तो रुक्मिणी ने आपके लिए संदेशा भेजा है। क्या है संदेशा? नहीं, उन्होंने पत्र ही भेजा है, पढ़ के सुनाओ। रुक्मिणी उवाच, तो वो ब्राह्मण पत्र पढ़ के सुनाने लगा। उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर वो लीला आपके मन में बैठ जाएगी, आपके स्मृति पटल कर, स्मृति का एक पर्दा है, उस पर उसकी छाप, मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी, फोटो जैसा फिल्म, आज का खींचा हुआ फोटो 10 साल के बाद, अरे बहु 100 साल के बाद भी उसको देखा जा सकता है, उसकी प्रिंट। तो अगर ध्यान से सुना ही नहीं तो फिर स्मरण कहाँ से होगा? तो श्रवण के समय वैसे ये सुनी हुई बातों को फाइलिंग करना चाहिए, फाइलिंग समझते हैं उसको, अपने अपने स्थान पर उसको बिठाना चाहिए, या श्रवण के समय उसको उसका पेंटिंग कर दे जाना चाहिए। ओके, ये व्यक्ति, फिर उसका वराना, इतने पुत्र, चित्र, जो पेंटर होता है ना, एक डॉट, फिर एक लाइन खींचता है, नेक्स्ट ऐसी लाइन खींचता है, फिर ऐसी लाइन खींचेगा। तो ये जो कथा है, कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से, क्रमशः सुनने से ध्यानपूर्वक, फिर उसका एक पेंटिंग बन जाता है, और रूप धारण करता है, फिर धीरे धीरे वो रूप हिलने डुलने लगेंगे, अधिक प्रगत अवस्था में केवल चित्र, स्थिर चित्र नहीं रहेंगे, वो विल मेक सम मूवमेंट्स, तो भगवान की लीला प्रकट होगी, उसका दर्शन होगा। लेकिन पहले श्रवण से फिर आगे दर्शन। तो इस धाम में जो हुआ, हम तो उस समय थे नहीं, थोड़े देरी से पहुंचे, बट इज नेवर टू लेट, अब भी आए तो स्वागत ही है। तो जो 5000 वर्ष की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम मिटा सकते हैं ध्यानपूर्वक श्रवण करने से, वो लीला आज भी हो रही है ऐसा कुछ अनुभव हमको होगा अगर हम फिर श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा भी उत्पन्न होगी। तो रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था, बड़े विस्तार से पत्र लिखा है, कई सारे 1, 2, 3, 4 7-8 पैराग्राफ्स है उसमें, पैराग्राफ समझते। और फिर रुक्मिणी ने अपने हस्ताक्षर किए है, यूर सिंसियरली रुक्मिणी, और अपने हाथ से पत्र लिखा है, टाइपिंग नहीं किया, फिर उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है, द पर्सनल टच नहीं रहता। तो रुक्मिणी ने स्वयं पत्र लिखा है, उसको लिफाफे में डाल के ब्राह्मण को दिया था, अब ब्राह्मण पढ़ रहा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शर्णवताम ते, इस प्रकार उसने शुरू किया है अपना पत्र। तो पत्र में ही लिख रही है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, ये भुवन सुंदर कौन, भुवन सुंदर श्री कृष्ण श्याम सुंदर मुकुंद, श्रुत्वा आपका गुण, यह गुण ही कहा है, लीला भी हो सकती है रूप के संबंध में, आप मैंने सुनकर, जब से जैसे मैंने सुना तो हुआ क्या, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो अंगतापम, ये भाव वैसा ही है जैसे गोपियों ने ऐसा भाव प्रकट किया था, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृत। तो रुक्मिणी भी कह रहे आपकी आपकी यह कथा, आप संबंध, आपके संबंध की कथा का श्रवण करके हुआ क्या, मेरा अंग ताप मिट गया, अंग ताप विरह की व्यथा ज्वाला कल हम चर्चा कर रहे थे वो मिट जाती है, मिटी हुई है, लेकिन वैसे और भी विरह उत्पन्न होता है, जितना श्रवण करे संग भी प्राप्त होता है, फिर वियोग का भी अनुभव होता है। तो आपके रूपम दृशाम, एनीवे तो आपके रूप का वर्णन मैंने सुना है, और मैंने अपना जैसे मेरा मन तो आप में प्रभु आपके चरणों की ओर दौड़ता है, कात्वा मैं तो ऐसा पढ़ते जाएंगे तो 7 दिन लगेंगे ही। तो कौन नारी है संसार में जो आपको नहीं चुनेगी, आपको पसंद नहीं करेगी। नरसिंह आप कैसे हो, नरसिंह नरों में नरपुंगव, नरों में सिंह, तो आप आ जाइए वो लोमड़ी आने के पहले, वो कोल्हा का कोल्हा, कोल्हा के क्या मतलब, कोल्हा लांडगा, लांडगा वो लांडगा शिष्यपाल आने के पहले ये नरसिंह आप आ जाना, आप मेरी शिकार करना, वो लांडगा आने के पहले मैं आपके लिए हूं, देखना कि वो लोमड़ी मेरा स्पर्श ना करे। और अगर आप समझते कि मैंने कुछ दान धर्म तप इत्यादि इत्यादि किया है तो उसका फल उसका परिणाम आप उचित समझते हो, आपकी प्राप्ति के का अधिकार मुझे है, तो प्रभु आ जाइए, अब अर्जेंसी की बात, समय ज्यादा नहीं है, अर्जेंसी की बात, अब विवाह तो कुछ ही दिनों में होना है, आप आ जाना और मुझे यहां से ले जाना, मत कर, या भीड़ होगी क्या होगा सब होंगे, तो उसमें भीड़ में से मुझे आप उठा के ले जाना, मतलब उसके लिए आपको थोड़ा कुछ शुल्क कुछ मूल्य चुकाना होगा, खतरा है ये है वो है, लेकिन वो आप जाने, आप बलवान हो बुद्धिमान हो, आप युक्ति का उपयोग करो और मुझे प्राप्त करो। तो रुक्मिणी ने सोचा कि इतना पत्र पढ़ेंगे तो भगवान सोच सकते हैं, वहां मैं आ तो जाऊंगा, तुम तो अंतःपुर में महल में रहोगी, आने के उपरांत मैं जब तुमको ले जाने का प्रयास करूंगा तो कई लोग तो मेरा विरोध भी करेंगे और कुछ फिर लड़ाई हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, तो इससे कैसे बचा जाए, ऐसे आप शायद सोचते होंगे। तो रुक्मिणी ने पहले ही सोच के कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ मेरा उपाय, मैंने पहले ही सोचा है, हमारा मीटिंग पॉइंट होगा मंदिर के सामने, मैं न तो महल में होंगी न तो मंदिर में रहूंगी। तो बताती है, हमारे घर में ऐसी पद्धति है, परिपाटी है, दुल्हन जाती है अम्बा के मंदिर में प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, तो मैं भी जब जाऊंगी और पूजा के उपरांत जब लौटूंगी तो आप वहाँ मिलना। तो पत्र में ही लिखा है उसने, बड़ी चालाक है या बुद्धिमान, रुक्मिणी को कहा ही है तो उसका ये परिचय भी यह होता है। अंत में कहती है, जैसे राधा रानी ने भी कहा था, असली शिवा पादरताम पिनस्तुमाम अदर्शनात अदर्शनात, दर्शन नहीं देने से मर्म हत हमको। और तो वो भाव रुक्मिणी ने प्रकट किया है, मैंने तो अपना निवेदन तो प्रस्तुत किया, लेकिन अगर किसी कारणवश मुझे आप पसंद नहीं करते हो, नहीं चाहते हो, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं तो आप नाथ प्राणनाथस्तु स एव नापरा, मेरे प्राणनाथ तो आप ही हो, ये बात तो पक्की है, तो इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में सही, आई एम रेडी टू वेट, मैं आपकी प्रतीक्षा कुछ दिन तक करती रहूंगी, लेकिन या इस जीवन में आप प्राप्त नहीं होंगे तो मैं आपकी प्रतीक्षा अगले जीवन या कई जन्म जन्मांतर के लिए करती रहूंगी, जन्म भी स्यात् जही या शत जन्म, सौ जन्मों तक सैकड़ों जन्मों तक मैं रुकने के लिए तैयार हूं। तो और फिर वहां हस्ताक्षर, तो ब्राह्मण ने कहा, फिर आपने तो संदेश तो सुन ही लिया, अब यथा इच्छसी तथा करो, जैसे भी विमर्श कर तुम क्रियताम तदनंतरम। इस प्रकार ये एक अध्याय कहो या आधा अध्याय, क्योंकि ये कथा वैसे आधे अध्याय में ही शुरू हुई थी, इस दूसरी कथा थी इस अध्याय के प्रारंभ में, फिर मध्य में ये कथा प्रारंभ हुई। वैदर्भ्या सतु संदेशम निशम्य यदुनंदनः, तो वैदर्भी का ये संदेश यदुनंदन जब सुने तो ब्राह्मण के हाथ में हाथ मिलाए, मतलब स्वीकार किए, अपना विचार व्यक्त तो नहीं किए लेकिन हाथ मिलाए, मतलब कुछ बात बनने वाली है या कुछ अनुमोदन की बात या स्वीकृति की बात। श्री भगवान वाच, भगवान अब कहे, क्या कहे भगवान, तो उन्होंने सुना तो था रुक्मिणी की कैसी दशा हो रही है, मेरे बिना कैसे डाम बैठो। तो तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्रा च न लभे निशी, तो मेरी हालत भी वही है, रुक्मिणी की हालत मनस्थिति का तो वर्णन सुने थे पत्र में, तो भगवान के मेरी स्थिति भी तो वैसी ही है, मुझे तो रात्रि को नींद तक नहीं आ रही है, बस पलंग पर लेटे तो रहता हूं लेकिन स्मरण तो मैं बस उस रुक्मिणी का करता रहता हूं, क्या कहा जाए। वैसे रुक्मिणी ने तो कहा था, मैं तो निर्लज बन गई प्रभु, मैं जो भी कह रही हूं, मैंने तो आपको अपनाया है, तो दुनिया जो कहना कहे सही, लेकिन तो वह भगवान भी इस ब्राह्मण को अपना गुह्यम आख्यति, प्रच्छति अपने गुह्य गोपनीय विचार, मन के विचार ब्राह्मण के समक्ष रखे हैं, तो तुरंत ही भगवान अपने सारथी को कहे रथ तैयार करो। तो दारू को रथ तैयार करने के लिए कहा है, तो घोड़े जोत लिए, रथ तैयार है। तो भगवान उस रथ में विराजमान हुए, ब्राह्मण को भी उसी रथ में बिठाए। आरुह्य शंदनम शौरीर और आनर्तात एक रात्रेन, आनर्थ द्वारका उस प्रदेश का नाम आनर्थ देश, उस समय आनर्थ देश कहते थे, ये विदर्भ देश वो अनर्थ देश से एक ही रात्रि में बड़ा तूफान एक्सप्रेस। भगवान का रथ सायंकाल को वहां से प्रारंभ हुआ, उनकी यात्रा सूर्योदय के समय कौंडिन्यपुर धाम की, कौंडिन्यपुर धाम में पहुंचे। तो यहां उतने समय में बहुत सारी विवाह की तैयारियां, दुल्हन भी तो तैयार हो रही है, तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस शहर का कौंडिन्यपुर, कुंडीन ये जो नगरी थी उसको सजाए हैं, उसको उसका श्रृंगार, जैसे कार श्रृंगार भी आजकल चलते हैं, कार श्रृंगार, तो इस नगरी का श्रृंगार, सड़ा सम्मार्जन, रंगोली इत्यादि इत्यादि, पताका झेंडे समलंकृतम तोरणई, तोरण बांधी तोरणे और समलंकृत, अलंकृत किया है सारे नगरी को, गंधमाल्य अंबर भूषित, स्त्री पुरुष नए वस्त्र पहने हुए हैं, और ब्राह्मण आए हैं, मंगल गान हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, उनको भोजन खिलाए, भोजयित्वा भोजन खिलाए जा रहे ब्राह्मणों को, ब्राह्मण भोजन। सुस्नाताम सुदतिम कन्याम कृत कौतुक मंगलाम, तो रुक्मिणी ने स्नान किया है, कैसी रुक्मिणी, सुदतिम सुंदर, इसके सुंदर दांत, और इसी के साथ शिशुपाल उनका आगमन हो रहा है, और शिशुपाल के मित्र मंडली भी आ रही है, शाल्व जरासंध आ गए, दंत वक्र आए, विदुरथ आए, पौंड्रक आए, और सभी अपनी अपनी सेना लेके आ रहे, विवाह के लिए आ रहे कि युद्ध खेलने आ रहे, उनको शंका है। किस बात की शंका है? कृष्ण के यह पदार्पण आगमन की शंका उनको है, इसलिए शिशुपाल ने बताया होगा फोन करके, खाली हाथ नहीं आना, ऐसे कोई बुके लेके आए, कोई गिफ्ट लेके आए, वो लाए नहीं लाए, लेकिन आर्मी लेके आना, थोड़ा थोड़ी युद्ध हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड। तो सेना लेके पहुंच रहे, तो वहां द्वारिका में दूसरे प्रातः काल को पता चला कि मुकुंद ही नहीं है, कृष्ण नहीं है अपने महल में, बलराम को पता चला नहीं है, क्या सभी को पता चला, लेकिन बलराम को और भी एक बात का पता चला कि हाँ अगर गए हैं तो कहाँ गए होंगे, कौंडिन्यपुर, मैं जानता हूँ, बलराम जानते हैं, तो उन्होंने भी सेना साथ में ली है, देखा कि कोई सैन्य को तो साथ में नहीं ले गए, तो बलराम जी बड़े भ्राता जो रक्षा भी करते हैं, सेवा करते हैं कन्हैया की, तो वो सेना लेके वे भी यहाँ पर पहुँच गए, जय श्री कृष्ण बलराम की। तो अब सभी तैयारियाँ, दुल्हा भी आ गया, दुल्हन तो थे ही, और सारी सब तैयारी या हो चुकी है, कृष्ण बलराम भी पधारे हैं, तो इस प्रदेश के नागरिक यहाँ पहुँच गए विदर्भ के, और उनको खबर मिली है कि कृष्ण बलराम भी यहाँ पधार चुके हैं, तो उनके दर्शन के लिए वैसे पहले भीष्मक राजा ने जैसे अन्यों का स्वागत किया, शिशुपाल और अन्य राजाओं का, तो द्वारका से पधारे हुए राजा कृष्ण का, द्वारकाधीश का, और उनके भ्राता बलराम का भी स्वागत किया है। तो विदर्भ देश के जनता कृष्ण बलराम का दर्शन कर रही है। तो यही पर कई वर्णन आया है कैसे इस प्रदेश के लोग नागरिक कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहे थे, कृष्ण बलराम के सौंदर्य का पान कर रहे थे। तो पान जब करते हैं तो हम लोग जलपान, प्याले में जल भरा जाता है फिर उसको पीते हैं, तो वैसा ही वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो जो जनता भक्त मंडली इस प्रदेश के कृष्ण बलराम के सौंदर्य को अपने आँखों के प्यालों में भरते, प्याला बनता है ना आँखों का, एक ऐसा करोगे तो वहाँ थोड़ा प्याला कुछ जल इकट्ठा हो सकता, प्याला उसको प्याला का, तो सौंदर्य का प्याला भर देते और फिर उसको पी लिए। प्याला खाली हो गए तो फिर पुनः भर देते, जैसे हमारे ब्रह्मचारी खीर के प्याले खाली करते रहते हैं। तो बड़े तृप्त, बड़े प्रसन्न थे कृष्ण बलराम के दर्शन से। अब बस वो शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ मंगल सावधान का समय कुछ निकट आ ही रहा था। एक ही कार्य बाकी था, दुल्हन अभी तक नहीं गई थी दुर्गा देवी के दर्शन और पूजा के लिए, तो वो भी तैयारी अभी हो गई, जा रही है, साथ में कई अपने सहेलियों को लिया रुक्मिणी ने। कई सारे ब्राह्मण वाद्य बजा रहे हैं और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, भीष्मकन्या ओके दस। तो रुक्मिणी जब जा रही है दुर्गा मंदिर की ओर, तो दुर्गा के चरणों की ओर जा रही है रुक्मिणी, कहाँ जा रही है, दुर्गा के चरणों की ओर जा रही है। और जा कैसी रही है, चल के अपने चरणों से चल के जा रही है, लेकिन स्मरण कर रही है और किसी के चरणों का, किसके चरण होंगे वे, तो तीन व्यक्ति के चरणों का उल्लेख सुखदेव गोस्वामी करते हैं। जा रही है दुर्गा के चरणों की ओर, चल के जा रही, अपने चरणों का उपयोग करती हुई, लेकिन स्मरण कर रही है श्री कृष्ण चरणों का। तो भगवान पति के रूप में प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। ओके, इसके पहले एक बात प्रसंग, रुक्मिणी प्रतीक्षा कर रही थी, सब दुल्हा भी आए, उनकी आर्मी भी आ गई, आ गए वो आ गए, लेकिन वो ब्राह्मण क्यों नहीं आ रहे, आएंगे कि नहीं, क्या होगा, कोई समाचार नहीं मिल रहा था। तो अंततो गत्वा वो ब्राह्मण भी आ गए और रुक्मिणी को मिले, हाँ काम बन गया। हाँ, तब तक वैसे रुक्मिणी की बाई भुजा और बाया आग कुछ फड़क रहा है, कुछ कंपन हो रहा है, उससे भी पता चल रहा था कि कुछ ये शुभ लक्षण है, कोई गुड न्यूज ही मिलने वाली है। तो ब्राह्मण ने समाचार दिया था, वैसे उसके बाद वो निकल गई है दुर्गा के दर्शन के लिए, पहले जाने से तो टाइमिंग तो कैलकुलेशन चल रहा है रुक्मिणी का, तभी जाना है वो मीटिंग पॉइंट की ओर, अगर कृष्ण है तो जाऊंगी, नहीं तो कृष्ण के आगमन का पता चलने के उपरांत वो जाती है मंदिर की ओर, और हमें पति के रूप में प्राप्त हो प्रभु श्री कृष्ण, ऐसी प्रार्थना है, दुर्गा से प्रार्थना कर रही है। अगर जैसे कात्यायनी की पूजा गोपियों ने की थी और वो मांग रही थी और नंदन हमको प्राप्त हो पति के रूप में, वैसी प्रार्थना इस धाम में रुक्मिणी ने की हुई है। तो पुनः जब बाहर आई, अब महल की ओर लौटना है मंदिर से, और वही कई बीच में कृष्ण के मिलन की महत्वाकांक्षा भी रखी हुई है उसने। तो रुक्मिणी जैसे लौटी, लौट रही है, मंदिर से बाहर आई, लौटी तो वह एक और दृश्य दिखाई दिया। जितने सारे राजा महाराजाज आए थे वे सभी दुल्हन का दर्शन करना चाहते हैं, सभी देखना चाहते हैं रुक्मिणी को। कभी नहीं देखा था, बहुत कुछ सुना था लेकिन देखा नहीं था। तो दो दो कतार में, कोई रथ में विराजमान है, कोई घोड़े पर सवार है, कोई हाथी के पीठ पर बैठे हैं, वैसे हाथ में हथियार लेके बैठे हैं, या रेडी अलर्ट सावधान, वो भी उद्देश्य है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो रुक्मिणी जब उस शोभा यात्रा में लौट रही है, शोभा यात्रा, तो उसके सौंदर्य का विशेष वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, उसके रूप का वर्णन, या कैसा रूप वो राजा महाराजा देख रहे थे, तब क्या देखा, तो रुक्मिणी का वर्णन है, उसकी हंस जैसी गति कैसी चल रही है रुक्मिणी, और उसका सुंदर सौंदर्य, उसका वराना और उसकी कमर कैसी है, उसके बड़ा डिटेल वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं जो देख रहे थे राजा। लेकिन रुक्मिणी तो उनको नहीं देखना चाहती है, इसलिए उसके बाल कुछ अपने मुंह को छिपाए हुए हैं, लेकिन समय समय पर उन बालों को थोड़ा हटा के तिरछी नज़र से देखना भी चाह रही है। वो कहाँ है, ये लांडगे तो है ये लोमड़ी तो बहुत इकट्ठे हुए, लेकिन वो मेरा नरसिंह, वो कहाँ इस भीड़ में। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी जैसे हकीकत घटना घट रही थी उसका वर्णन वे करते हैं। तो इन राजाओं ने जो हाथी के पीठ पर या घोड़े पर सवार होके बैठ के जो रुक्मिणी का दर्शन कर रहे थे, तो ऐसा दर्शन, बस ऐसा रूप को उन्होंने कभी कभी देखा नहीं था। सब चकित हुए, सबका फिक्स्ड। रुक्मिणी जैसी भी जा रही है तो सभी के कैमरास रुक्मिणी के ऊपर। तो उस स्थिति में ये सारे लोग, राजा लोमड़ी मंडली, अपने देह भान को, बाह्य देह भान नहीं रहा उनको, तो कईयों के हाथ के किसी की ढाल गिर रही है, तो किसी की तलवार गिर रही है, अस्त्र गिर रहे हैं, शस्त्र गिर रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ लोग भी गिर रहे धड़ाम धड़ाम करके। जिससे रुक्मिणी आगे बढ़ रही है तो सबको गिराती हुई जा रही है, उसका सौंदर्य ने ऐसा हथियार बन गया सौंदर्य। और किस उद्देश्य से, यू नो, कलह शंख या कृष्ण आ सकते हैं, रुक्मिणी का हरण हो सकता है, ये पहले उनको ब्रीफिंग हुई थी, उनको पहले बताया था, वो उद्देश्य भी वहाँ था, वहाँ एकत्रित होने का, लेकिन उस कार्य को, उस उद्देश्य को वो भूल गए। रुक्मिणी के सौंदर्य ने सबको भ्रमित किया, ऐसा भुलावा को फैलाया, और इसका लाभ उठाने के लिए कृष्ण तो तैयार थे ही। तो रुक्मिणी देख ही रही थी, तो रुक्मिणी ने पहले एक ध्वजा देखी, उस ध्वजा से पता चला ये किसके रथ के ऊपर की ध्वजा, कृष्ण के। तो फिर उसके उपरांत कुछ ही क्षणों में कृष्ण अपने रथ को आगे बढ़ाए, और रुक्मिणी जहाँ चली रही थी के बगल में खड़ा किए, और रुक्मिणी को पता ही था अभी नेक्स्ट क्या करना है, रथ किस लिए आया है, ये सारा कम्युनिकेशन तो हो ही चुका था, सॉल प्री प्लान्ड था, तो वैसे ही हो रहा है। तो रुक्मिणी भी छलांग मार के रथ में चढ़ रही है, तो कृष्ण भी कुछ थोड़ी सी सहायता तो किए है, उसी के साथ रुक्मिणी अब रथ में, कृष्ण के साथ रुक्मिणी रथ में विराजमान है। और फिर कृष्ण ने अपने घोड़े को ऐसा दौड़ाए तो फिर सारे लोमड़ी जग गए, अरे अरे क्या कह रहे, और फिर वे कह रहे थे कि ये तो लोमड़ी है, वे स्वयं को, हम तो नरसिंह, हम तो सिंह है और ये हमारे भोग्य है सब इसका, ऐसे उनके विचार थे। लेकिन ये लोमड़ी क्यों ले जा रहा है? तो सभी ने पीछा किया है और बड़ा बहुत घमासान कहते, घमासान युद्ध हुआ। फिर रुक्मी भी गया है कुछ संकल्प लेके, रुक्मी ने रथ को रोकने का प्रयास किया है, कौन रोक सकता है। रुक्मी के साथ युद्ध भी हो रहा था कि जान लेने के लिए प्रभु बैठे थे, लेकिन जान तो बलराम की सलाह से, बलराम ने थोड़ा मना किया, नहीं नहीं उचित नहीं है, तो उसकी हजामत कर ली भगवान ने उसके अपने तलवार से कुछ बाल काट लिए। तो ये मृत्यु के समान ही, मृत्यु दंड जैसी बात हुई, वो सारी बेइज्जती जो रुक्मी की हुई। और फिर और भी सभी थे शिशुपाल, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। शिशुपाल तो जानता ही था, 17 बार मैंने युद्ध तो किया है, ऐसा मैं जानता हूं कितने बलवान है। तो सभी ने अपनी पराजय को स्वीकार किया है। और वैसे युद्ध के बीच में से कृष्ण और बलराम आते समय, ब्राह्मण था साथ में, जाते समय कौन थी? रुक्मिणी थी साथ में। तो भगवान द्वारका धाम की, द्वारका में पधारे हैं और वहाँ तो रुक्मिणी हरण यहाँ हुआ और रुक्मिणी द्वारकाधीश विवाह वहाँ हुआ द्वारिका में, फर्स्ट मैरिज। आगे अब 16107, आठ नहीं, पहला तो इसके बाद -1 तो और विवाह होने हैं। लेकिन पहली रानी, पहली पट्ट रानी श्री कृष्ण की रुक्मिणी मैया की रुक्मिणी रही। फिर और भी आगे रुक्मिणी द्वारकाधीश की लीलाएं द्वारिका में बहुत सारी आपको पढ़ने को मिलेगी, सुनने को। लेकिन इस धाम की ये संक्षिप्त लीला है। तो ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि यह रुक्मिणी ने जो श्रवण किया, हमारे श्रवण का टॉपिक भी वही है, जो रुक्मिणी सुनती थी भगवान मुकुंद का रूप और गुण और लीला का वर्णन जो महात्मा सुनाते, तो कथा तो वही है, टॉपिक तो वही है, कृष्ण वही है, उन्हीं का रूप भी वही है, भगवान के गुण भी वही है, कहो या कोई वर्धित भी होते रहते, बढ़ते भी रहते हैं उनकी संख्या, उनकी मात्रा, घटते तो नहीं भगवान का, भगवान के गुण। और वही लीला है, उसे रुक्मिणी ने वो लीला नहीं सुनी, हम जो अब सुन रहे हैं। रुक्मिणी हरण की लीला और एक लीला हो गई जो रुक्मिणी ने पहले नहीं सुनी थी, हम अब सुन रहे हैं। तो वही टॉपिक है और वही टॉपिक वैसे बना रहेगा सदा के लिए, आदो मध्य अंते, ग्रंथों के भी प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, या सृष्टि के भी प्रारंभ में, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के अंत में, भगवान की लीला तो वही रहेगी। कृष्ण का नाम कृष्ण था, आज है, और इसमें कोई परिवर्तन होगा कृष्ण के नाम में? न तो कृष्ण के रूप में परिवर्तन होता है, कृष्ण जैसे थे 5000 वर्ष पूर्व वैसे ही, और तब से अब तक हमारे कितने सारे रूप हो गए, पता है कितने सारे रूप हुए कि नहीं? हमारे बहुनी में व्यतितानि जन्मानि, तुम्हारे और मेरे अर्जुन कई सारे जन्म हुए, तो हर जन्म में भगवान का रूप तो वही रहता है, लेकिन हमारा रूप बदलता रहता है, रूप बदलता है, हमारा नाम बदलता है, हमारा काम बदलता है, हमारे माँ बाप अलग अलग होते हैं, लेकिन कृष्ण के संबंध की हर बात कैसी है? शाश्वत है। ये शब्द का उपयोग शाश्वत, सदा के लिए वही। तो ये जो शाश्वत बातें हैं उसका श्रवण करने से फिर कृष्ण प्राप्ति। तो आप कहोगे तो रुक्मिणी तो भगवान को पति बना ली और हम कथा सुनेंगे श्री कृष्ण की तो हम कौन बनेंगे, या कृष्ण हमारे कौन बनेंगे? कृष्ण हमारे भी पति बनेंगे, मास्टर बनेंगे, संबंध कुछ हल और भी हो सकते हैं, कोई दास भाव, दास्य भाव, कोई सख्य भाव, कोई वात्सल्य भाव, अलग अलग भाव। लेकिन तत्व सिद्धांत के दृष्टि से देखा जाए तो भगवान है पुरुष, जैसे हम भोक्ता कह रहे थे, और हम है भोग्य, जीवात्मा भोग्य है। तो पुरुष भगवान है तो हम कौन हो गए? प्रकृति हो गए। प्रकृति एक होता है पुरुष और दूसरी होती है प्रकृति। वैसे संसार में तीसरी चौथी बात है ही नहीं, एक पुरुष है और प्रकृति है। प्रकृति के कुछ प्रकार है, अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा प्रकृति, और फिर बहिरंगा प्रकृति, और जीवात्मा है बीच वाली तटस्थ प्रकृति या तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, और शक्ति के शक्तिमान कहो, ऐसी शक्ति को प्रकृति कहेंगे तो फिर भगवान को क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे। ये प्रकृति है, अंतरंगा प्रकृति, बहिरंगा प्रकृति, तटस्थ प्रकृति। तो प्रकृति का संबंध किसके साथ? पुरुष के साथ। और इसको शक्ति कहेंगे, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, तो फिर भगवान हो गए शक्तिमान कहेंगे, भगवान शक्तिमान। शक्ति, शक्ति किसकी होती है? शक्तिमान की शक्ति होती है, पावर हाउस की पावर होती है, पावर हाउस की पावर। तो पावर हाउस कौन है? भगवान है। और हम उनकी छोटी मोटी अलग अलग किस्म की प्रकार की शक्ति है, पावर है, लेकिन पावरफुल, पोटेंट और पोटेंसी कहते हैं, पोटेंट कृष्ण भगवान। तो ऐसा शास्त्रों में कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसा लिखते हैं, हरिनाम चिंतामणि में भी, जहाँ हमारे संबंध ज्ञान की बात, हमारा संबंध किसके साथ है? संबंध ज्ञान, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, हम भगवान की शक्ति है। तो वह तो शक्ति शक्तिमान की होती है, और शक्तिमान के सेवा में शक्ति का उपयोग होना चाहिए। तो भगवान अगर पुरुष है तो हम सारे कौन बन गए? प्रकृति बन गए। मतलब प्रकृति मतलब स्त्री, पुरुष भगवान पुरुष है, हम सब स्त्रियां है। ओह इतनी सारी पत्नियां, भगवान 16,000, बाप रे बाप, इतनी 16,100। इसलिए कोई कल बता रहे थे अश्रद्धालु को आवश्यकता से अधिक प्रचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो समझेंगे नहीं, अपराध भी करेंगे। तो उनको बताओगे 16,108, एक तो कहो इस माइथोलॉजी, ये तो कल्पना हो, किसने देखा है, नहीं ये सब झूठ मूठ है ऐसा भी, और है तो फिर देखो कैसे शिशुपाल ने भी बहुत कुछ कहा था हस्तिनापुर में, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये नीति नियम का पालन भी नहीं करता है, और इतनी सारी किस इतने सारे विवाह कर रखे इसने, ऐसा बता रहा था वो शिशुपाल। तो अश्रद्धालु क्या समझेंगे? आध्यात्मिक जीवन कब शुरू होता है? आदौ श्रद्धा से, आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और फिर प्रेम। इस प्रकार ये श्रद्धा से प्रेम का सोपान है। तो हम भी भगवान की प्रकृति है, हम भी भगवान की स्त्री है। तो 16108 तो कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग कृष्ण के लिए, बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कृष्ण की कितनी पत्नियां हो सकती है या कितनी पत्नियां है, क्या जवाब है इसका? असंख्य कहो या और क्या कहोगे? अनंत, अनलिमिटेड, और भी क्या कहोगे? और क्या कहोगे? नंबरलेस, तो वही कुछ अलग तो नहीं कहा, दूसरे शब्दों में कैसे कहोगे? नहीं, नॉट, मैं एक उत्तर ढूंढ रहा हूं। वेरी गुड। तो जितने भी जीवात्मा हैं, असंख्य तो कहा आपने, लेकिन वैसे अधिक उचित ये उत्तर होगा कि जितने भी जीवात्मा है वे सारी उस पुरुष की प्रकृतियां है। इसीलिए भगवान की पत्नियां कितनी है? जितने जीव है वे सभी भगवान की पत्नियां, प्रकृति है, भगवान के आनंद के लिए, सुख के लिए उनको भगवान जन्म दिए है, उत्पन्न किए है। और ये नहीं पूछना कि कब उत्पन्न किया, ये अचिंत्य बातें हैं, लेकिन अंश तो कहा भगवान, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनात। ना वही रिमाइंडर कि इस धाम में रुक्मिणी ने श्रवण की भगवान की लीला कथाएं, और भगवान की लीला कथा का श्रवण किया तो रुक्मिणी ने इसी धाम में अपना मन बना लिया, मेरे पति होंगे तो कृष्ण। तो हम अब यहाँ आया है, हमारी बारी, तो हम भी वही लीला कथा का श्रवण करेंगे तो हमारा मन भी बनना चाहिए, हमारे पति या हमारे स्वामी, हमारे माता पिता बंधु सखा अगर कोई होंगे तो कृष्ण, ऐसा कुछ मन बना के हम लोग जाते हैं। तो फिर अलग से कहने की आवश्यकता तो नहीं है, स्पष्ट होना चाहिए कि इस संसार के जो रिश्ते नाते हैं, आज है तो कल नहीं। किसी यूथ से हम बात कर रहे थे, किसी युवक से, इस्कॉन यूथ फोरम वाले, वो इस्कॉन में आना चाहते हैं, इस्कॉन को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं, जो होता ही है, घरों घरी माती चा सुलियात कदा, मन बदलाव लगना है। मतलब हर घर का कहानी एक ही है, हमारे घर का कहानी 40 साल पहले जो था वही कहानी। फिर पुंडली का उदाहरण देंगे, पुंडली का, उनके माता पिता, अगर आप वैसे माता पिता होते भी तो बात अलग होती। लेकिन जैसे तो मैं कह रहा था कि यह माता पिता ने तो तुमको शरीर दे दिया, लेकिन भगवान ने आत्मा नहीं दिया होता तो क्या आपके माँ बाप आपको शरीर दे सकते थे? तो वह आत्मा नहीं होता तो शरीर भी नहीं होता, इस पर विचार करो। तो भक्त कोई बनना चाहता है, मतलब वो चाहता है, आत्मा आत्मा सोचता है, मेरे पिता तो भगवान है, मेरी माता, मेरे पति या जो भी सारे संबंध भगवान ही है, मेरा स्रोत ही भगवान है, मेरा सोर्स ही भगवान है आत्मा का। लेकिन इस संसार के माता पिता थोड़ा शरीर को बना लेते हैं, माता पिता मिलके, उनके मिलन से भी शरीर बन जाता है और सारा क्लेम कर देते हैं, इट्स माय सन, इट्स माय डॉटर, मेरा। और तुम आत्मा को भूल गए, आत्मा को भूल गए और सारा अधिकार जमा रहे हो, मेरा पुत्र है। तो पहले हम किसके हैं? पहले भगवान के हैं, फिर इस संसार में हम और किसी के बन जाते हैं। माता पिता की सेवा तो करो, तो वो भी था, उसने कहा कौन से माता पिता की सेवा, मेरे तो कई सारे माता पिता हो गए, इस जीवन में आप माता पिता हो, लेकिन मेरे तो कई माता पिता हुए। जब जब मैं जन्म लेता आसमान से तो नहीं गिरता था मैं, पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे, तो किसी जननी के जठर में शयन करके तो मैं जन्म लेता था। तो हर समय वो माता मुझे क्या समझती थी, मैं उसी का पुत्र हूँ। अब आप क्लेम कर रहे हो, उन सब की सेवा मैं करना चाहता हूँ, पहले के जो माता पिता उनकी सेवा भी होगी, और कृष्ण की सेवा करूँगा तो मैं उन माता पिताओं की सेवा भी कर पाऊंगा। लेकिन भगवान को भूल के केवल आपकी सेवा मैं करूँगा, तो एक सेट ऑफ पेरेंट्स, एक सेट कई सेट्स हुए हैं पेरेंट्स के, तो एक सेट की तो सेवा हो गई माता पिता की, लेकिन पहले के जो माता पिता हुए उनकी कैसे सेवा। लेकिन कृष्ण की सेवा करूंगा तो कृष्ण है इस सारे वृक्ष की जड़ जो है, मूल जो है श्री कृष्ण है, वहां सेवा करो, वहां खाद पानी डालो तो तना है, फिर शाखा है, उपशाखा है, त्रप्यंती स्कंद भुजोपशाखा, सारी शाखा उपशाखा पत्ते फल सबको, सबकी सेवा हो गई। कृष्ण की सेवा करने से, पेट की सेवा करने से फिर हाथ की भी सेवा हो गई, पैर की भी हो गई, सिर की भी हो गई, सब पेट की तो हो ही गई। तो विधि तो यही है, पेट को खिलाओ सारे शरीर को लाभ होगा, तो कृष्ण को खिलाओ, कृष्ण की सेवा करो तो अरे संसार की सेवा आपने की, सभी जीवों की सेवा आपने की, या निश्चित ही आपने माता पिता परिजनों की आपने सेवा की, और पूर्वजों की, पूर्व जो माता पिता हुए उनकी भी आपने सेवा की। तो श्रवण कीर्तन से भगवत प्राप्ति, इसका उदाहरण क्या है, रुक्मिणी उदाहरण है। रुक्मिणी को प्राप्त हुए श्री कृष्ण, क्या किया उसने, क्या किया, श्रवण कीर्तन किया, बस घर बैठे बैठे भी श्रवण कीर्तन किया। राजा भी कीर्तन सुनते थे या कथा कीर्तन सुनते थे, उनकी बेटी भी वहाँ बैठ के सुना करती थी, ऐसे माँ बाप भी थे। भीष्मक राजा बड़े राजर्षि धार्मिक प्रवृत्ति के, उनके दरबार में कई ऋषि मुनि आया करते थे, वो कथा सुनाते, तो राजा भी सुन रहे, राजपुत्री भी सुन रही है, रुक्मिणी भी सुना करती थी। ओके, कोई एनी क्वेश्चंस, और अगर नहीं है तो ये 10 मिनट्स ब्रेक भी है, और फिर लौटने पर आगे ध्यानपूर्वक जब